प्रारंभ करते हैं संस्कृत व्याकरण। व्याकरण को वैसे लोहे का चना कहा जाता है, समय सार को हलवा कहा जाता है, तो व्याकरण को लोहे का चना भी कहा जाता है। पर लोहे का चना स्वस्थ लोग पचा लेते हैं, यानी कि अच्छी बुद्धि और उपयोग लगाने से व्याकरण आ सकती है, ऐसा मत सोचना नहीं आ सकती है। और यही कारण है कि अपनी भारतीय संस्कृति में बच्चों को स्कूल के अंदर पहली कक्षा से लेकर और पांचवी आठवीं क्लास तक भी अनिवार्य संस्कृत के रूप में छोटी छोटी संस्कृत तो पढ़ाई जाती थी। अभी तो हम वही आपको बेसिक नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज तो वही हम आपको बता रहे हैं। अब आप खोलिएगा संस्कृत व्याकरण में पेज नंबर 17 और सूत्र नंबर 45 पर हम आते हैं। जो आपके पास पीडीएफ पहुंचा है उसको खोलिए और व्याकरण को पढ़ना शुरू करिए। देखिएगा क्या आपने 44 नंबर सूत्र तक नद्देशा तक पढ़ा था, दध्यत्र और नद्देशा यानी यण संधि के रूप में इसको जाना था कि ई को य हो जाता है और आगे उसकी संधि हो जाती है तो बन जाते हैं। आप देखो असवर्णों की संधि यानी कि अब है मधु प्लस अत्र, वधु प्लस आसनम। अब आप देखिएगा ये है मधु प्लस अत्र यानी उ और आ की जो संधि है उसको असवर्ण में संधि कहेंगे। कैसे? तो आप इसको अनतिक्रमण विश्लेषित इस सूत्र से बिल्कुल अलग अलग एक एक शब्द को कर लीजिए। तो मधु में से उ निकाल दिया तो मद बचा, हलंत कर दिया इसमें से जब उ निकल गया उ, और फिर प्लस अत्र इस प्रकार से रहा। देखो मद उ प्लस अत्र। अब सूत्र लगता है 45 नंबर का वमु वर्णः
वमु वर्णः
वमु वर्णः
वमु वर्णः।
वमु वर्ण सूत्र क्या कहता है कि वर्ण को व हो जाता, इस उ को व हो गया और वो व भी हलंत रहा वकार, तो व हो गया और अत्र जैसा का तैसा रहा। तो इसमें कहा है कि यदि आगे वर्ण ना होकर असवर्ण स्वर हो, अगर आगे उ होता तो अलग संधि होती, अब ये उ के बाद में आ है तो इसको असवर्ण कहा है। सवर्ण किसको कहते हैं? जैसे उ उ होता आ आ होता तो सवर्ण कहलाता, यहाँ उ के बाद आ है तो ये असवर्ण की संधि है। तो उ को व हो गया और अत्र ज्यो का त्यों है। तो आप व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत, माने ये व्यंजन ध है इसमें व जुड़ गया और व भी व्यंजन है तो इसमें आ जुड़ गया, संधि हो गई तो मध्वत्र बन गया। क्या बना? क्या बना? मध्वत्र। ये उ को वा हो करके और सूत्र इसमें लगा 45 नंबर का मध्वत्र। अब आगे चलिएगा मध्वत्र के बाद में वधु प्लस आसनम। अभी बड़ा उ और बड़ा आ की संधि है, ये भी असवर्ण है, अभी संधि चल रही है स्वर संधि, उ भी स्वर है आ भी स्वर है, लेकिन उ के बाद उ होता तो सवर्ण की संधि होती, उ के बाद आ है तो ये असवर्ण संधि कही जाती है। आपको सवर्ण और असवर्ण के बारे में हम बता चुके हैं, अब इसका भी अलग अलग विश्लेषण करें। तो वध व मतलब उ बड़ा उ होता तो उ को व कर दिया वम वर्ण सूत्र से ही, और आसनम है तो क्या हो गया बद्वासनम, यानी बाद वाला जो आ है जैसे बद्वत्र था मध्वत्र था तो उसमें भी आ का लोप नहीं हुआ था, ऐसे यहाँ आसनम के आ का लोप नहीं हुआ तो बद्ध व आसनम तो हो गया बद्वासनम। क्या बना? बद्वासनम। ये संधि हो गई और इसके लिए सूत्र एक रहा ये 45 नंबर का वमु वर्णः। अब आप आगे चलिएगा, हम चलते हैं अब पितृ प्लस अर्थः मातृ प्लस अर्थः। अब ये भी असवर्ण संधि है, री जो री 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 भी इस संस्कृत व्याकरण में आई, आज तो कंप्यूटर से शायद री 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 किसी स्पेशल फॉन्ट के अंदर ही है, बाकी कंप्यूटर से हट भी गए हैं ये वर्ण। तो पितृ प्लस अर्थः, अब इसको विश्लेषण किया तो क्या हुआ पित्री प्लस अर्थ पित री प्लस अर्थ, तो अब सूत्र लगता है 46 नंबर। रम रिवर्ण
रम रिवर्ण
रम रिवर्ण
रम रिवर्ण,
यानी रिवर्ण। देखो रा की तीन स्थिति है, एक है रकार, एक है रिकार और एक है रेफ, समझे। र रकार माने र लिखा जाता है, जो चाहे वो संयुक्त अक्षर करके लिखा जाए, और एक री है जो नीचे, जैसे मातृ में री है, और ये अर्था में ये रेफ है, ये ऊपर चला जाता है। तो तीन चीजें हैं। अब यहाँ री को र हो जाता है, तो पित री और फिर री को र हो गया, तो र हलंत हुआ और अर्था है। पित री इन र और अर्था, तो इसकी संधि होकर के पितृर्था बन गया, यानी पितृर्था नहीं बना। जो री है उसको री बोलते हैं, जो र है उसको र बोलते हैं, और जो ऊपर का रेफ है वो दो शब्दों के बीच में आता है तो उसको बोलते हैं रेफ, तो ये रेफ है, तो मिल करके मात्रर्था बन गया, समझे ना। क्या बना? मात्रर्था। ऐसे ही देखो मातरी प्लस अर्था, तो मातृर्था बन गया, पितरी अर्था पितृर्था बन गया। अब आगे एक और सूत्र लेते हैं कि ली प्लस अनुबंधा ली प्लस आकृति। ली के साथ छोटा और बड़ा दोनों की संधि करेंगे, तो अब इसका भी हमने अलग अलग किया, तो ली को ला और उसने री निकाल दिया, फिर अनुबंधा है, तो अब आगे सूत्र है लम ली वर्ण
लम ली वर्ण
लम ली वर्ण
लम ली वर्ण,
यानी असवर्ण स्वर के आने पर ली वर्ण को ल हो जाता है। असवर्ण स्वर क्या है? री है इधर, उसके बाद अनुबंध का आ है, तो ली ली होता है तो सवर्ण हो जाता, और ये असवर्ण है, ली के समान नहीं है, तो ये असवर्ण हो गया। तो अब देखो ली प्लस अनुबंधा है, तो ली में से री निकाला, तो ये हलंत ला बचा प्लस अनुबंध, तो ये बन गया लनुबंधा। और उसके बाद ली प्लस आकृति है, तो ल री इसमें अलग अलग जा छोटा था तो हमने नहीं अलग अलग निकाला, क्योंकि ऊपर का आप नियम समझ चुके हैं, तो ली प्लस आकृति है, ली को ल हो गया। लम रिवर्ण सूत्र क्या कहता है कि रिवर्ण को ल हो जाता है, तो हलंत ल हो गया, इसको ली को फिर हमने ये हटा दिया तो इसको ल हो गया, और आकृति ही तो लाकृति बन गया। ऐसे ली अनुबंधा था, इसको ल हो गया, तो अनुबंध इसको हलंत कर दिया, ली अनुबंधा तो लनुबंधा हो गया और लाकृति। इनके कोई अर्थ इतना नहीं समझना है, लेकिन केवल संधि के नियम समझना है। ये जब जहां पर कहीं अगर आएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि सब चीज आपके यूज में ही आए, लेकिन नियम को सिखाने के लिए कुछ चीजों का सहारा, शब्दों का सहारा लेना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से 47 नंबर के सूत्र तक आपने संधि प्रकरण को, असवर्ण की संधि प्रकरण को जान लिया है। और ध्यान देना है आपको कि 31 जनवरी को हम आपकी 60 सूत्रों की परीक्षा लेंगे, उससे पहले पहले 60 सूत्र तक का कोर्स पूरा करना है, स्वर संधि पूरी होगी, और आप एक दूसरे से चाहे तो प्रश्न करके उनके उत्तर को जान करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। जैसे इसका समापन करूंगी मैं केवल एक प्रश्न के साथ, आप बताइएगा कि इसमें मैं पूछती हूं आपसे कि व्यंजनों के कितने वर्ग हैं, व्यंजन के कितने वर्ग हैं, इसका जिनको उत्तर आता हो वो हैंड रेज करें, और उसके बाद आपको स्पॉटलाइट किया जाएगा, अनम्यूट किया जाएगा, आप उसका उत्तर देना। देखो आया क्या, कुछ लोगों के हैंड रेज हुए या नहीं? मनीषा जी का हैंड रेज है, सविता जी का भी है, किनका? अर्चना जी का है। चलिए बताइए अर्चना जी, वर्ग के कितने भेद हैं? बहुत अच्छा, एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? पांच। तो ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सूत्र आपको इसमें ध्यान देना है कि ते वर्गा पंच पंच पंच, ये 12 नंबर का सूत्र है, यानी कि आपने बताया, इसका मतलब है कि उपयोग के साथ में आप पढ़ रहे हैं। आप दूसरे में आप बताएंगे कि गंधोदकम, गंधोदकम शब्द कैसे बना, उसका विग्रह भी कीजिए, यानी विच्छेद भी कीजिए और उसकी संधि भी कीजिए। गंधोदकम कैसे बनता है, इसे हम जान सकेंगे कि आप कितने लोग व्याकरण की परीक्षा देने वाले हैं। गंधोदकम, जिसको आता हो विग्रह करके संधि करना, तो हैंड रेज करें। देखो एक, देखो गंधोदकम ये शब्द किस प्रकार से बना है, इसको अलग अलग भी करिए और फिर बाद में संधि करिए। यहां से बताओगे जीवन प्रकाश? नहीं। हाँ मनीषा जी बता रहे हैं क्या? चलिए मनीषा जी बताइए। हाँ अनम्यूट कर। देखो माता जी को नहीं तो दो।
हाँ आ और उद्गम का ओ मिलकर के ओ हो गया, तो इससे बना गंधोदकम।
ठीक है, बताया आपने आ और ऊ मिलकर के ओ हो गया, लेकिन इसका नियम देखिएगा, 30 नंबर का सूत्र है उवर्णे ओ, यानी कि उद्गम का ऊ आने पर गंध के आ को ओ हो जाता है और ऊ का लोप हो जाता है। ये तो बच्चों वाली बात है कि आ और ऊ मिलके ओ हो गए। ऊ के आने पर, इस जो व्याकरण आप पढ़ रहे हैं, ऊ के आने पर गंध के आ को ओ हो जाता है और ऊ का लोप हो जाता है। उसके बाद में संधि कौन से सूत्र से होती है? 25 नंबर के सूत्र से, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, यानी कि गंध का धा जो है हलंत है, उसमें ओ और दकम मिल गया, तब गंधोदकम बन गया। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्नों के साथ आप स्वयं भी अभ्यास करके और तैयारी करें। 31 जनवरी को अगर आप अच्छे से परीक्षा दे करके उत्तीर्णता प्राप्त करेंगे, तो हम समझेंगे कि आप व्याकरण को अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ने की इच्छा है और उससे आपको आगे और भी संस्कृत की चीजें पढ़ने में लाभ प्राप्त होगा। जय लो दात सांग मई जिनवाणी माता की जय।